ओम शांति। हम सभी शिव बाबा जो स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। सभी कहलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। तो जब मास्टर सर्वशक्तिमान है या आत्मा ही शक्ति स्वरूप है, तो जो सर्वशक्तियां बाबा से हमें वरदानों में प्राप्त हुई हैं, उन शक्तियों को हम समय पर विधि पूर्वक प्रयोग कर सकें, तभी हम माया की विभिन्न परिस्थितियों में या कहेंगे जो भी विघ्न आते हैं जीवन में, उनमें सफल हो सकते हैं, विजयी बन सकते हैं और विजयी रत्नों की माला में आ सकते हैं। बाबा ने एक बार कहा था कि जो अष्ट रतन में आने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि बाबा ने अभी भी इस मुरली में आठ की माला की बात की, तो बाबा ने कहा था कि जो अष्ट रत्नों में आने वाली आत्माएं हैं वो सदा ही अष्ट शक्तिधारी होंगी। कभी भी कोई शक्ति की वो कमी अपने में महसूस नहीं करेगी और इसीलिए वो सदा विजयी होंगे, क्योंकि शक्तियां ही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। तो जैसे जब कोई युद्ध के मैदान में होता है तो अस्त्र शस्त्रों से ही विजय प्राप्त होती है, बिना अस्त्र शस्त्रों के युद्ध में विजयी नहीं बन सकते हैं। और इसीलिए जो यादगार दिखाई है देवियों की, वो देवियों को भी अष्ट भुजाधारी और अष्ट शस्त्रधारी दिखाते हैं। तो वो शक्तियां हमने कहां तक धारण की हैं? ये शक्तियां जो हैं वो हमारे लिए माजून का काम करती हैं, यानी आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देती हैं कि यहां तक हम अपनी दवाई भी इन शक्तियों के द्वारा कर सकते हैं। तो ऐसी विशेष शक्तियां हमारे सामने हाजिर हों, उसके लिए बाबा कहता है हमें अपनी सीट पर सेट होने की जरूरत है। जब हम मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहेंगे, तब जिस शक्ति को जिस समय ऑर्डर करेंगे वो शक्ति हमारे सामने हाजिर होगी। जैसे दुनिया में भी कोई सीट पर होते हैं तो उनका ऑर्डर माना जाता है, जो पोजीशन की सीट पर होते हैं तो जितने भी उनके काम करने वाले होते हैं वो उसी प्रमाण उनकी आज्ञा मानते हैं, और अगर वो सीट पर नहीं हाजिर है तो फिर फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे ही जितना हम इस सोमान की स्मृति में होंगे, इसकी सीट पर होंगे, उतना सर्व शक्तियां हमारे सामने समय पर उपस्थित होंगी। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं वो तो सभी जानते हैं, आपसे पूछेंगे तो जब हम कोर्स ही करते हैं तो ही हमें बताया जाता है कि राजयोग से हमें ये शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो मुख्य शक्ति जो है वो है सहन करने की शक्ति। आज वर्तमान समय का कलयुग का जो वातावरण है उसमें सबसे मुख्य रूप से हमें सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर कदम पर ऐसी आत्माओं से या ऐसी परिस्थितियों से हमारा सामना होता रहता है कि अगर हम सहन नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। मानो किसी ने किसी भी कारण से मेरा अपमान कर दिया, बहुत साधारण सी बात है, हर रोज कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको कोई ना कोई बात ऐसी कह देगा जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, या आपसे कोई ना कोई ऐसा व्यवहार कर देगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, या कोई भी ऐसा दुख पहुंचा देगा आपको, भले बोलेगा नहीं लेकिन कोई ऐसा कर्म कर देगा आपके प्रति जो आपको दुख पहुंचेगा, धोखा दे देगा, झूठ बोल देगा मानो, तो फिर क्या उस समय मेरी स्थिति पर उसका प्रभाव आता है? अगर मेरी स्थिति पर प्रभाव आता है, मैं निराश हो जाती हूँ, दिल शिकस्त हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, तो इसका मतलब मेरी सहन शक्ति ने काम नहीं किया। सहन करना माना कोई पहाड़ जैसी बात भी अगर हमारे सामने आती है, मानो इतनी बड़ी समस्या है, तो बाबा कहता है कि उसको बिल्कुल छोटा बना दो ना, पहाड़ को राई बना दो और राई को भी रुई जैसा अनुभव करो, यानी इतने मौज से अगर हम उसको पार कर सकते हैं तब कहेंगे वो सहन शक्ति हमारे अंदर है। जो भी बात आई है अगर उसके विस्तार में हम चले जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न में जाकर के फिर मन चिंता में उलझने लग जाता है, ये विघ्न आया तो क्यों आया, मेरे पास ही क्यों आया, तो अगर हमने सार को विस्तार बना दिया यानी राई को पहाड़ बना दिया तो उसको सहन शक्ति नहीं कहेंगे। तो दुनिया में भी सब करते हैं लेकिन हम बाबा के बच्चों की शक्ति ये है कि नथिंग न्यू का फुल स्टॉप लगा करके, जो हुआ ना, वो पहले भी हुआ था, पहले भी मैंने इस पर विजय प्राप्त की थी, पहले भी मैंने इसको पार किया था और आज भी पार करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा समझ करके उसको हम सहज सहन कर लेते हैं। यानी सहन करना न लगे। कहते हैं इसने गुस्सा किया ना, इसलिए मैंने गुस्सा किया। उसने गुस्सा किया फिर भी मैं उसे शांति का दान दूं, फिर भी मैं उसे शुभ भावना दूं। जैसे हम चित्र में दिखाते हैं ना, एक बच्चा पेड़ पर पत्थर मार रहा है, तो कहते हैं कि पेड़ पत्थर खा करके भी क्या देता है, मीठा फल देता है। तो ये बाबा ने हमें सहन शक्ति सिखाई है कि कोई कैसा भी मेरे साथ कर रहा है लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है, उसे शुभ भावनाओं का दान ही देना है। ज्ञान योग की गहराई में जाकर हम उसके राज को समझें, प्रश्नों में जाने की बजाय ये परिस्थिति क्यों आई है। हम ये राज जब समझ जाते हैं तो फिर उसे सहज पार कर लेते हैं। हमें पता है कि सारे हिसाब किताब हमें यहीं खत्म करने हैं, कर्मातीत बनना है ना, संगम युग पर हमें संपन्न बनकर वापस घर जाना है। तो ये सब जो भी आते हैं ये सब हमारे अकाउंट खत्म करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर मेरा कर्ज चुकता होता है तो खुशी होती है कि नहीं होती है? तो कर्ज चुकाने की खुशी की ये हिसाब किताब पूरा हुआ, तो एक होता है या मैं समाप्त कर रही हूँ अगर मैंने फिर भी शुभ भावना रखी, और अगर मैंने उनके साथ उनके जैसा कर दिया या जैसे को तैसा कर दिया, जैसे दुनिया वाले करते हैं, आपने दो कहे तो मैंने चार बोल दिए, हिसाब बराबर करने की कोशिश की, तो मेरा अकाउंट क्या होगा संगम युग में, एक का 100 गुना हो जाएगा, हिसाब किताब की डिक्शनरी दूसरी हो जाती है। संगम युग में एक अच्छे कर्म का पदम गुना जमा भी होता है, हर कदम में पदम भी है, बाबा की श्रीमद प्रमाण, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो पदम जमा भी कर रहे हैं, लेकिन वही अगर श्रीमद के विपरीत विकर्म हो गया, गलत कर्म हो गया, तो एक का 100 गुना दंड भी हो जाता है, तो हिसाब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमेशा स्मृति में रहे, हम सहन शक्ति धारण करके अपने हिसाब किताब पूरे समाप्त कर रहे हैं। फिर दूसरी बात बाबा कहता है कि हमेशा ये समझो, कोई भी पेपर मेरे सामने आता है हम आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है, मुझे अनुभवी बनाने के लिए आया है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी उन्नति होती है, तो हमें खुशी होती है ना। दुनिया में भी ऐसा होता है, हम कहीं भी आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन होता है तो खुशी होती है कि नहीं होती? तो अगर इसको इस तरह से सोचेंगे, और सचमुच वो विघ्न हमें आगे बढ़ाते हैं, अगर आप उसको गहराई से देखेंगे तो जीवन में जो आपको परिवर्तन महसूस होता है, कई बार जो आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, वो इस तरह की जो परिस्थितियां आती हैं वही आपको परिवर्तन करने के निमित्त बनती हैं, और उससे हम आगे बढ़ते हैं, वो हमारे लिए तोहफे की तरह होती हैं। जैसे बाबा कहता है तूफान को तोहफा समझो, तोहफा समझेंगे, गिफ्ट मिलता है तो भी खुश होते हैं, तो हमारी सहन शक्ति बढ़ जाएगी ना। स्मृति को परिवर्तन करना है, समस्या को समस्या समझेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन उसे आगे बढ़ने का साधन समझेंगे तो फिर मजबूत हो जाएंगे, यानी वो शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। फिर तीसरी बात बाबा कहता है कि जितना स्नेह हमारा होगा बाबा के प्रति और परिवार के प्रति, उतनी हमारी सहन शक्ति ज्यादा होगी। लौकिक में भी ऐसा होता है, संबंधों में देखो, माँ को बच्चों से बहुत स्नेह होता है तो वो बच्चे की हर बात को बहुत प्रेम से सहन कर लेगी। कैसा भी बच्चा होगा, वो बीमार भी होते हैं तो रात रात भर बच्चे के लिए जाग भी लेगी, वो सहन करना भी नहीं लगता है उनको ना, क्योंकि प्रेम है। तो बाबा के प्रेम में अगर हमने सहन किया, कुछ सहन किया, या परिवार में कुछ ऐसे हमारे स्वभाव संस्कार वाले भाई बहने हैं, उन्हें हमें सहन किया, तो वो सहन करना नहीं लगता है। जितना वो स्नेह और अपनापन है, वो शक्ति सहन करते हैं। फिर चौथी बात बाबा कहते हैं कि हमेशा ये समझो, किसके श्रीमत से हम सहन करते हैं? बाबा की श्रीमत से सहन करते हैं, और बाबा की श्रीमत से सहन करते हैं तो उसमें बाबा की दुआएं हमारे साथ होती हैं। बाबा की दुआएं हमें आगे बढ़ाती हैं और हमारे मार्क्स जमा होते हैं। मानो कई बार हमें लगता है हमने सहन किया, माना ये समझते हैं हम हार गए, इनके सामने हम चुप रह गए ना, इसका मतलब हमारी ही गलती है, तो हमारी हार हुई ना। देखने में तो ऐसे लगता है कि हम कमजोर पड़ गए, हमने कुछ कहा नहीं, इसका मतलब। लेकिन भगवान के दिल में उसकी श्रीमत का पालन करके मेरी विजय हो गई। तो किसकी विजय माला में मैं पिरोई? ये जो अविनाशी आत्माएं हैं, जो परिवर्तन होने वाली आत्माएं हैं, उनके सामने हार का कोई महत्व नहीं है। लेकिन भगवान के दिल में मेरी विजय, अगर मैं उसके दिल तक नशीन होती हूँ उनकी दुआएं लेकर के, तो वो मेरी सबसे बड़ी विजय है। तो जब हम इसको अपनी स्मृति में रखते हैं तो हमारी सहन शक्ति बढ़ती जाती है, जो आज कदम कदम पर हमें जरूरी होती है। फिर दूसरी शक्ति है परिवर्तन करने की शक्ति। जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं, परिवर्तन होना हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। सबसे पहला संकल्प ही बाबा परिवर्तन कर देता है, मैं देह नहीं हूं, इस देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं। आत्मा की शक्ति कार्य करने लगती है। फिर बाबा कहता है कि मुझे स्वयं का परिवर्तन हर कदम पर करना है, ये हमेशा याद रखो। मुझे हे अर्जुन बनना है। भले ही सब आत्माएं परिवर्तन कर रही हैं, लेकिन दूसरों को नहीं देखना है कि वो कितना परिवर्तन कर रहा है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। मुझे विश्व परिवर्तक बनना है, तो वो विश्व परिवर्तक का कार्य मेरे स्वयं के परिवर्तन से शुरू होता है, और वो परिवर्तन सुबह से लेकर रात तक करना है। पूरी दिनचर्या में अमृत वेले उठना, उसी विधि पूर्वक उठना, सारे दिन लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। लौकिक कार्य व्यवहार में रहती ना सारा दिन, अलौकिक में तो नहीं रहते हैं, लेकिन लौकिक में रहते हुए भी हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में उसे अलौकिक में परिवर्तन करते जाओ। मानो कार्य कर रहे हैं तो भले लौकिक कार्य कर रहे हैं, लौकिक जॉब कर रहे हैं, लौकिक बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन क्या समझकर करेंगे? मैं ट्रस्टी हूं, बाबा मेरे द्वारा ये करा रहे हैं, ये मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं, खुदाई खिदमतगार हूं, तो परमात्मा ने मुझे जो कार्य दिया है वो कार्य मैं कर रहा हूं। तो अगर ये स्मृति रहेगी तो क्या होगा? जो कार्य कराने वाला है वो याद रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा या नहीं? तो फिर सारे दिन में बाबा की वो शक्ति मिलने से, बाबा ने कहता है कि हम हर कार्य में सफल होते हैं, क्योंकि कर्म योगी होते ही कार्य में कुशलता आ जाती है। ऐसे ही रात को सोते हैं जब, तो सोते समय भी हमारा यही परिवर्तन हो कि हमें बाबा को पूरे दिन का अपना चार्ट दे करके परिवर्तन करके फिर सोना है। दूसरों के भी परिवर्तन की बात जहां तक आती है, तो सदा उनको शुभ भावना, शुभकामना, मनसा द्वारा परिवर्तन करना। इस तरह से वो परिवर्तन की शक्ति हमें दूसरों के प्रति यूज करनी है। तीसरी शक्ति है मनन करने की शक्ति। जो ज्ञान रत्न बाबा से हमें रोज मिलते हैं, बाबा हमें कहते हैं उनका विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे हम भोजन पचाते हैं तो पाचन शक्ति से शरीर को शक्ति आती है, ऐसे ही आत्मा शक्तिशाली तब बनती है जब हम ज्ञान का मनन करते हैं। ज्ञान मनन करने से वो ज्ञान हमारा स्वयं का अनुभव बन जाता है, वो ज्ञान हमारी अथॉरिटी बन जाता है, या हम ऐसे कहेंगे कि ज्ञान जैसे अपना हो गया। जैसे भोजन पचने के बाद शरीर का ही खून या शक्ति बन जाती है, शरीर में ही शामिल हो जाता है ना, तो वो ज्ञान को हम समय पर तब यूज कर सकेंगे। वो ज्ञान रत्न जरूर है मेरे पास, लेकिन सही समय पर वो कार्य करे वो तब होगा जब मैं उसकी स्वरूप बनूंगी। तो इसीलिए ज्ञान का मनन करना जरूरी है। और जो ज्ञान के पॉइंट्स मिलते हैं हमें, जरूरी नहीं है कि हमें बहुत एकांत का समय मिलेगा और हम बैठ करके उस पर विचार सागर मंथन करें। मिलता है तो बहुत अच्छा है, अगर एकांत का समय मिलता है और किसी भी ज्ञान के पॉइंट को लेकर के हम उसकी गहराई में जाते हैं, तो किस तरह से जाना चाहिए कि इस पॉइंट को मुझे अपने विघ्नों को जीतने के लिए कैसे कार्य में लगाना है। मानो आत्मा की ही पॉइंट है, अब वो आत्मा की पॉइंट देह अभिमान पर विजयी बनने में कैसे मदद करती है, अनुभव है? देह अभिमान का कोई भी पेपर आता है, चाहे वो फिर मैंपन के रूप में आए, चाहे फिर वो काम विकार के रूप में आए, यानी दैहिक आकर्षण के रूप में आए, तो तुरंत आत्मिक स्मृति में स्थित होकर के हम उस माया के पेपर पर विजयी हो जाएं। ये तब होगा जब मैंने उस ज्ञान को अपना बनाया होगा, तभी वो उस समय वो कार्य करेगा। नहीं तो पता है मैं आत्मा हूं लेकिन वो पॉइंट उस समय काम नहीं करेगी, आपने उसका अभ्यास नहीं किया है ना। तो जैसे मिलिट्री वाले भी अगर किसी शस्त्र का अभ्यास नहीं करते हैं तो समय पर सही निशाना नहीं लगेगा, चूक जाएगा निशाना, क्योंकि अभ्यास नहीं है, इसलिए उसमें उतनी कुशलता नहीं होगी। तो यहां भी अगर वो चिंतन मेरे अभ्यास में नहीं है तो समय पर मैं विजयी नहीं बनूंगी, फिर मुझे बाद में पश्चाताप होता है। अगर ऐसा नहीं किया होता, ऐसा नहीं बोला होता, ऐसा नहीं चलन चला होता, क्यों? क्योंकि मनन शक्ति से आत्मा उतनी शक्तिशाली नहीं बनी है। तो मनन शक्ति हमें विघ्न प्रूफ बनाती है, माया जीत बनाती है, और साथ साथ हम बाबा की याद में भी सहज मगन स्थिति का अनुभव करते हैं। अगर ज्ञान का स्मरण है तो फिर ज्ञान देने वाला भी मुझे याद है। और इसीलिए जब हम योग में बैठेंगे तो योग में बैठते ही हमारा योग सहज लग जाता है, लवलीन स्थिति का अनुभव हमें सहज होता है। तो मनन शक्ति, फिर उसके बाद है महसूसता की शक्ति। ये शक्तियां जो हम अष्ट शक्तियां सुनते हैं उन शक्तियों से थोड़ी अलग है, यानी ब्राह्मण जीवन में हमें जिन शक्तियों का प्रयोग करना है वो शक्तियां तो हैं ही, उनके बारे में हम जानते हैं, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, लेकिन साथ साथ ये शक्तियां भी आवश्यक हैं। तो महसूसता करने की शक्ति, उसमें है सबसे ज्यादा अपनी कमजोरियों की महसूसता, क्योंकि हम सब के कोई ना कोई पुराने प्रबल संस्कार होते हैं, कोई ना कोई विशेष गुण भी होते हैं जिसके कारण हम बाबा के बने हैं, बाबा कहते हैं हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है जिससे वो चुनकर इस दैवी परिवार में आया है, और साथ साथ कोई ऐसी विशेष कमी भी हर आत्मा में है। तो अगर हम रियलाइजेशन करते हैं, जिसे हम महसूसता कहते हैं, अपनी कमी को महसूसता के द्वारा परिवर्तन कर लेना, वो है सच्चे दिल की महसूसता, उससे परिवर्तन होता है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे अपनी कमी समझ में नहीं आती है और कोई दूसरे मुझे इशारा देते हैं कि देखो आपकी ये कमी है, अगर आप इसको दूर करोगे, इस पर पुरुषार्थ करोगे तो अच्छा रहेगा। हम सभी तो पुरुषार्थी हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी ये कमी मान ली तो मेरा नाम जो है इसमें आ जाएगा कि ये मेरी गलती है। तो फिर हम अपनी गलती नहीं मानते या कमी नहीं मानते, फिर उसको सिद्ध करना शुरू कर देते हैं, महसूस नहीं करते उस बात को, बल्कि और ही दूसरों की शिकायत करते हैं, क्योंकि ये ऐसा करते हैं इसीलिए मेरे से ऐसा होता है। तो बाबा कहता है कि अगर हम इस तरह से चतुराई करते हैं तो ये हम अपना महापाप बनाते हैं, जैसे कहा विकर्म भी फिर उतना ही बनता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम उस बात को सिद्ध करने के साथ साथ या कहेंगे कि परिवर्तन ना करने की भावना से जैसे हम दूसरों पर डालते हैं, तो ये जो गलत हमसे होता है या जो गलती हम करते हैं, इस गलती के कारण बाबा कहता है कई बार जो बुद्धि विवेक है उसका हम खून करते हैं। विवेक का खून करना, एक बार बाबा ने बहुत अच्छे से उसको स्पष्ट किया था पूरी मुरली में, कि यदि हम ये भी समझते हैं कि मैं देह हूँ, सच्चाई ये है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अगर हम देह समझ करके भी व्यवहार करते हैं तो भी हम विवेक का खून करते हैं। बहुत सूक्ष्म तरीके से बाबा ने उस बात को समझाया था। तो परिवर्तन शक्ति की भी बहुत सूक्ष्मता है, उसको उस तरह से समझते हैं तो फिर हम सिर्फ स्वयं के परिवर्तन पर ही, जैसे हे अर्जुन बनना बाबा कहता है, जो ओटे सो अर्जुन, वो हे अर्जुन मुझे बनकर अपना परिवर्तन सदा करना है। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं करना कर रहा है, उस पर मुझे अपना ध्यान नहीं देना है। और फिर चौथी शक्ति जो है वो है साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति। ब्राह्मण जीवन में साइलेंस की शक्ति मनसा सेवा के लिए बहुत बड़ी शक्ति है, और जितना हम अंतर्मुखी होकर के साइलेंस में जाते हैं उतना हम स्वयं भी साइलेंस में अपना परिवर्तन कर पाते हैं, और उतना ही दूसरों के प्रति भी हम शक्तियों का या प्रकाश का दान दे पाते हैं। लेकिन उसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों की साइलेंस होना जरूरी है। व्यर्थ संकल्प या तो परचिंतन के संकल्प होते हैं, या तो पास्ट के संकल्प होते हैं, और या फिर इधर उधर के जो घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर के वो संकल्प जो मन में चलते हैं, साधारण संकल्प जिसे हम कहते हैं। तो सारे दिन में मन कुछ तो सोचता है, तो या तो वो ज्ञान की बातें सोचेगा या फिर व्यर्थ बातें सोचेगा। तो मैं अपने मन को ज्ञान के चिंतन में कितना बिजी रख पाती हूँ वो तो मेरी मनन शक्ति पर निर्भर करता है। तो उसके लिए बाबा हमेशा कहता है कि सुबह से लेकर के कोई भी एक पॉइंट अपने मन में रखो। अमृत वेले से मुरली सुनते हैं हम, कोई भी एक विशेष बात जरूर होती है जो हमें लगती है, वो बुद्धि में रखो और उसे बार बार स्मृति में लाओ। या जो टाइटल बाबा हमें देते हैं, स्वमान देते हैं बाबा, वो स्वमान को बार बार स्मृति में लाओ, मतलब मन बार बार ज्ञान की स्मृति में कैसे जाए वो विधि बनाओ अपने लिए। तो चाहे वो लिखकर बनाओ, अगर लिखना सहज है तो वो कुछ पॉइंट्स लिख करके अपने पास, हाँ भाइयों को तो जेब होती है, बहुत सहज होता है, वो पॉइंट्स लिख करके आप जेब में रख लो और जैसे ही स्मृति आती है उसको निकालकर रिवाइज कर लो कि आज बाबा ने ये कहा। और अगर हम 2-3 बार भी उसको पढ़ते हैं तो जरूर उस पर हमारी बुद्धि चलेगी कि ये बात बाबा ने कही है, इसे आज यूज करना है, इसका आज मुझे अनुभव करना है। मानो बाबा ने कहा कि आप मेरी मस्तक मणि हो, हाँ मेरे मस्तक में चमकते हुए सितारे के समान, या मेरे नैनों में समाये हुए नैनों के नूर हो, ऐसे बहुत बार बाबा मुरली में हमें ऐसे टाइटल देते हैं। तो अगर मैंने उसे बार बार याद किया तो धीरे धीरे मुझे अनुभव होने लगेगा कि सचमुच हम बाबा के चमकते हुए सितारे इतनी श्रेष्ठ मस्तक मनिया हैं, और उसकी खुशी और वो नशा भी फिर हमें अनुभव होगा। तो कोई ना कोई बात ऐसी सारे दिन के लिए अपनी स्मृति के लिए हमें बना लेनी है, तो फिर व्यर्थ संकल्पों से हमारी मुक्ति हो सकेगी, नहीं तो मुश्किल है। से कहेंगे बाबा इसलिए हमसे बार बार हाथ उठवाते हैं, इस पर भी बाबा ने जो हमें होमवर्क दिए हैं उसमें एक होमवर्क ये भी है, बाबा ने तो 1 महीने का टाइम दिया था पिछली बार कि 1 महीने में आपको व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाना है, और सभी ने हाथ उठाया था। तो अभी पूछेंगे आपसे, आप मुक्त हो चुके हैं व्यर्थ संकल्पों से, तो क्या कहेंगे, हाथ उठाएंगे, कोई है जो कहे हम पूरी तरह से व्यर्थ संकल्प से मुक्त हैं, एक भी व्यर्थ संकल्प मुझे नहीं चलता है, लगभग नहीं के बराबर, कोई कोई एक एक हाथ बीच में दिखाई दे रहा है। तो यानी अभी हम सभी को वो पुरुषार्थ करना है, तभी हम मन को जहां चाहे जैसी स्थिति में चाहे उसमें स्थित कर सकते हैं, और उसे कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। साइलेंस पावर के साथ साथ क्या चाहिए, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर चाहिए। जैसे जहां ब्रेक लगाना चाहे, अगर हम गाड़ी चलाते हैं और जहां ब्रेक लगाना चाहे वहां ब्रेक लग जाता है, तभी वो गाड़ी एक्सीडेंट से बचती है, या जहां उसको मोड़ना चाहे वहां वो गाड़ी मुड़ जाए। तो ऐसे ही मन में बहुत संकल्पों का तूफान है किसी कारण से, मानो कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसके कारण मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, अशांत है, और उसी समय मुझे कहा जाए एवर रेडी हो जाओ, फुल स्टॉप लगा दो अभी। बाबा कहता है मानो वही घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो, कई बार बाबा टेस्ट लेने के लिए भी हमें बोलते हैं। और अगर मन ऐसे संकल्पों में फंसा हुआ हो और उसी समय सिर्फ फुल स्टॉप लगा के एक बाबा दूसरा ना कोई, उस संकल्प में हम स्थित हो सकते हैं, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। उस समय ही मैं अगर अपने आप को अव्यक्त स्थिति में स्थित करना चाहूं तो वो सब संकल्प समाप्त करके उसी घड़ी में अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर रही हूँ, डबल लाइट स्थिति का अनुभव कर रही हूँ, या अपने निराकारी स्थिति का मैं अनुभव कर रही हूँ, जो भी स्थिति में अनुभव करना चाहती हूँ, उस योग की स्थिति में मेरा मन एकाग्र हो जाए तो वो मेरी कंट्रोलिंग पावर है। और बाबा कहते हैं अंतिम समय में ये बहुत 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 जरूरी है। दूसरे शब्दों में हम इसे समेटने की शक्ति भी कहते हैं। उस समय जब चारों तरफ बहुत हलचल का वातावरण होगा, बाबा हमें पहले से ही तैयार करते हैं, जैसे परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स पहले से तैयार होते हैं ना, कि ताकि जब परीक्षा का समय होगा तो हम पेपर के क्वेश्चंस हल कर सकेंगे, पास हो जाएंगे उसमें। तो बाबा हमें पहले से बताते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी स्थितियां होंगी जिससे हमें पार करना होगा, और आज भी उसके रिहर्सल हमारे सामने होते रहते हैं कि अकाल मृत्यु के दृश्य होंगे आपके सामने, अचानक आपके सामने ऐसी मृत्यु हो रही है जो आपने ना कभी सोची ना अपने वो उसमें लाया। और या फिर प्रकृति के पांचों तत्वों का एक साथ आप पर वार होता है, कहीं बाढ़ आती है या कहीं आग लगती है या कहीं भूकंप होता है, कुछ भी हो सकता है। तो अचानक कोई भी प्रकृति का तत्व, और अगर अंतिम समय है तो पांचों तत्व एक साथ हलचल में आएंगे। अभी तो एक एक तत्व का भी पेपर लेता है, और साथ साथ तमोगुणी आत्माओं के भी वार होंगे, क्योंकि आत्माएं हैं ही तमोगुणी। फिर स्वयं के भी जो संस्कार हैं, रहे हुए संस्कार हैं, बाबा कहता है माया भी अपना अंतिम वार वो भी छोड़ेगी नहीं, है ना, तो वो भी उस रूप में बाहर आएंगे। तो वो अनेक रूप में बाहर आ सकते हैं, आपके वो पुराने संस्कार कर्म बंधन के रूप में आ सकते हैं, कर्म भोग के रूप में आ सकते हैं, या फिर बहुत व्यर्थ संकल्पों के तूफान के रूप में आ सकते हैं। तो किसी भी रूप में अगर आते हैं, लेकिन उस समय ये सब हलचल होते हुए भी स्मृति रहे कि मैं अकेली आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड रूप में हूं और ये घर जाने का समय है, मुझे घर जाना है, पैकअप। जैसे वो कहते हैं मिलिट्री वाले सदा रेडी होते हैं अपना बिस्तरा तैयार करके कि कहां भी ऑर्डर, क्योंकि वो कभी भी ऑर्डर को मना नहीं कर सकते, चाहे कैसा भी स्थिति हो, अगर कमांडर का ऑर्डर मिला है मना ऑर्डर, उसको पालन करना ही है। तो यहाँ क्या समझेंगे हम, किस कमांडर का ऑर्डर है इस वक्त? जो हमारा सुप्रीम कमांडर है उसका ऑर्डर है जाना है, जाना है माना एवर रेडी, एवर रेडी माना चाहे फिर वो अपने शरीर की हो, चाहे अपने संबंधों की हो, चाहे वो वातावरण की हो, सब बातों से पूरी तरह से मन सिमट कर सिर्फ एक में स्थित हो जाए, उसको हम कहेंगे कंट्रोलिंग पावर। और रूलिंग पावर हमारे अंदर पूरी तरह से है, जो हमें समेटने की शक्ति देती है, जिससे हम पूरी तरह से बिंदु लगा सकते हैं। आत्मा भी बिंदु, शिव बाबा भी बिंदु, और हर बात को बिंदु लगा करके मैं उस बिंदु में समा गई। और फिर संगठन की शक्ति, हमारे इस ब्राह्मण संगठन के लिए बाबा कहता है कि यही वो संगठन है जो महायज्ञ है, और इस यज्ञ से ही पूरे दुनिया की आहुति होनी है। यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, तो अब हम चित्र में दिखाते हैं सहयोग की शक्ति, संगठन की शक्ति माना संगठन में सहयोग होता है, तो उसमें हम एक एक उंगली दिखाते हैं कि एक एक उंगली लगाई तो पूरा पहाड़ उठ गया, तो यहाँ कौन सी उंगली लगानी है संगठन में? बाबा कहते हैं जब पूरे संगठन में सभी का एक संकल्प और एक वृत्ति होगी तब आहुति होगी, यानी तब इस पूरी दुनिया का परिवर्तन होगा। तो हम सबकी जब ये वृत्ति बन जाएगी कि हाँ अब परिवर्तन होना ही चाहिए, ये समय है, और हमारे सभी के पुराने स्वभाव संस्कार उनकी भी हम आहुति कर देते हैं, तब ये इतना बड़ा परिवर्तन या इतना बड़ा पहाड़ जो है वो उठेगा। हम कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक मत की हम स्थापना कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ संगम युग पर जब हमारा एक संकल्प और एक वृत्ति होगी ना, उसी के अभ्यास में हम हर थर्ड संडे को एक साथ शांति के लिए योग करते हैं, ये सभी का शांति का ही संकल्प हो, पूरे विश्व के प्रति हमें शांति का दान देना है। तो संगठन में जो संकल्प होता है वो बहुत पावरफुल होता है। फिर बाबा ये भी कहता है कि संगठन में हमें एक दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने का भी सहयोग देना है। संगठन में कोई आत्माएं ऐसी होती हैं जो स्वयं नहीं कर पाती हैं, तो मानो अपने कोई पुराने संस्कार के वश कोई आत्मा कोई कर्म कर रही है जो श्रीमत प्रमाण नहीं है, सब बोल बोल रही है या ऐसा कुछ कर रही है, तो हम उस पर ध्यान नहीं दें, न तो उसको सुने ना उसको देखें, तो मानो अगर कोई एक्ट कर रहा है, कोई डांस कर रहा है या कोई ऐसी अपना कोई प्रदर्शन कर रहा है और दूसरा कोई ध्यान नहीं देता है तो वो कितना करेगा, छोड़ देगा। तो ऐसे ही अगर उनके उन कर्मों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे उनके संस्कार अपने आप छूटते जाएंगे और इस तरह से उनके परिवर्तन में हम सहयोग देंगे। संगठन में जब हम आते हैं तो आपस में स्नेह सहयोग की भावना तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन बाबा कहता है कई बार हम इसके साथ साथ फिर दूसरी चीजें भी यूज करना शुरू कर देते हैं, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं या उनको थोड़ा सा उनकी कमजोरी के कारण दबाने की कोशिश करते हैं। अभी बाबा ने हमें मुरली में क्या कहा इस बार, हरेक की विशेषता को देखो। हरेक की विशेषता को देखना है, हरेक के गुणों को देखना है और उसके आधार पर उनको आगे बढ़ाना है। ये बाबा ने हमें इस बार भी अंडरलाइन करवाया है। तो संगठन में जरूरी है, ऐसा नहीं है कि सबकी कमियां दूर हो चुकी होती हैं, लेकिन वो खुद भी अपनी कमियों को दूर करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमें उनकी कमियों को दूर करने में सहयोग देने के साथ साथ उनकी विशेषताओं को देखते हुए उन विशेषताओं से उनको आगे बढ़ाना है। ये है संगठन में एक बनना। लेकिन अगर हमारी आदत है उनकी कमियों को हम बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसका मतलब हम उनको कमजोर कर रहे हैं। और हमेशा एक दो की बात को मानने का भाव होना चाहिए। मानो हमारे विचार कभी किसी से नहीं भी मिलते हैं, किसी बात में आप अलग सोचते हैं वो अलग सोचते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं हाँ जी कर। ज्ञानी माना क्या, एक ने कही दूसरे ने मानी, उसको कहते हैं ज्ञानी। और बाबा को भी जब हम हाँ जी कहते हैं, सेवा प्रमाण, मानो संगठन प्रमाण, कभी कभी हमें अपनी बात को न वो करते हुए सहन भी कर लेना पड़ता है, कभी झुक भी जाना पड़ता है, जिसको बाबा कहता है लोक संग्रह अर्थ, हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि हमने अपने मैपन का त्याग किया, लेकिन अपनी सेवा की सफलता के लिए हमने अपने विचारों को छोड़ दिया, तो वो महानता है। वो बाबा ने कहा कि तब वो हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स हम जमा करते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे ब्राह्मण जीवन की शक्तियां हैं, और भी बहुत शक्तियां हैं जो बाबा हमें कहते हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैंने जो मुख्य शक्तियां जो ब्राह्मण जीवन में हमें दिन प्रतिदिन यूज करनी है, और जितना हम ज्यादा इन शक्तियों को यूज करते हैं उतना हम परिस्थितियों पर विजय बनते हैं। अभी भी आपने क्लास सुनी स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय, तो ये शक्तियां हमें स्वस्थिति में स्थित होने में मदद करती हैं, तो परिस्थिति पर भी हमारी विजय स्वतः होने लगती है और इस तरह से हम बाबा के विजयी रत्न बनने में क्या कहेंगे सफल होते हैं। तो हम पूरी कोशिश करें, जो बाबा ने हमें इस बार लक्ष्य दिया है कि हम बाबा के उस माला में आए, तो इन शक्तियों के प्रयोग करते हुए हम बाबा की माला में नंबर 1 आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।